आज है 10 नवंबर दिन रविवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार बनाने से मना किया, शिवसेना पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया।
जनादेश होने के बावजूद भी उसका अनादर करते हुए शिवसेना ने साथ में सरकार बनाने के लिए अनिच्छा व्यक्त की, इसलिए अब हम सरकार नहीं बनाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुलकर बोले अयोध्या के मुसलमान नौजवान।
सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करना चाहता है तो हमें जमीन अंदर ही दे, मेन अयोध्या के अंदर दे, 5 कोस के अंदर दे।
सुनिए, आप बीती बांग्लादेश के उन हिंदुओं की जिन्हें भारत से वापस भेज दिया गया। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया है। शनिवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा था, लेकिन रविवार शाम को भाजपा ने इस मुद्दे पर बैठक की और इसके बाद बीजेपी के एक नेताओं का दल राज्यपाल कोश्यारी से मिलने भी गया। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनकी पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। इस आग में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने न्यू साउथ वेल्स का दौरा किया, जहां उन्होंने पीड़ितों और दमकल कर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान एक नागरिक हैरी क्रेमर ने प्रधानमंत्री के सामने अपना दुख जताते हुए ऑस्ट्रेलियाई राजनेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने वैज्ञानिकों की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। हैरी क्रेमर ने कहा,
We've been telling the politicians the same message for over 10 years and they are not listening.
हम पिछले 10 सालों से नेताओं को ये बता रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनते ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री और न्यू साउथ वेल्स के नेता जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को हमेशा नकारते रहते हैं। हाल ही में 11,000 वैज्ञानिकों ने 4 पन्नों का एक बयान जारी कर कहा था कि हमें क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करनी चाहिए। ये थे ऑस्ट्रेलिया के एक नागरिक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान ने बताया है कि उन्हें कच्चे तेल के एक बड़े भंडार के बारे में पता चला है। इस तेल के भंडार में 5,000 करोड़ बैरल से अधिक कच्चा तेल होने का अनुमान है। ईरान को उम्मीद है कि तेल के इस भंडार से ईरान की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकेगी और उसके तेल भंडारण में भी बढ़ोतरी होगी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बताया कि इस खोज से उनके देश को कितना फायदा मिलेगा। ईरान के तमाम दुश्मन हमारे ऊपर अलग अलग तरह से प्रतिबंध लगाकर हमारी अर्थव्यवस्था को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे इंजीनियरों और कामगारों ने मिलकर 53 बिलियन बैरल वाले एक बड़े तेल भंडार का पता लगाया है। अगर हम इसका सिर्फ 1% तेल भी निकालेंगे तो हमारी कमाई में $32 बिलियन का उछाल आ जाएगा। ये थे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने दोबारा चुनाव करवाने की घोषणा की है। देश में पिछले महीने हुए चुनावों के नतीजों में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स यानी OAS ने शंका जाहिर की थी। OAS ने कहा था कि राष्ट्रपति मोरालेस का 10% अंतर से जीतना अंकों के लिहाज से संभव नहीं लगता। मोरालेस ने यह भी कहा कि दोबारा होने वाले चुनावों के लिए वो OAS की अनुशंसा के हिसाब से चुनावी बोर्ड के सदस्यों में भी बदलाव करेंगे। स्पेन में प्रमुख राजनीतिक दलों ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है, जिससे एक स्थिर सरकार का गठन हो सके। स्पेन के मौजूदा प्रधानमंत्री सोशलिस्ट पार्टी के पेड्रो सांचेस ने स्पेन के लोगों से कहा कि वो रविवार को हो रहे आम चुनावों में वोट डालें। वहीं सिटीजन पार्टी के नेताओं ने लोगों से घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात की। श्रीलंका में 14 साल पहले स्वीडन की एक युवती के बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अभियुक्त बनाए गए शख्स को श्रीलंका के राष्ट्रपति ने माफी दे दी है। पीड़ित युवती की बहन ने इस पर श्रीलंका के राष्ट्रपति की निंदा की है। कैरोलिन जॉनसन ब्रैडली ने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने उनके परिवार को बहुत बड़ा दुख दिया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। संदीप सोनी के साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के एक पखवाड़े के बाद सरकार बनाने के लिए जारी गतिरोध में आज उस समय एक नया मोड़ आ गया जब बीजेपी ने दो टूक शब्दों में सरकार बनाने से मना कर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इस फैसले का ऐलान किया।
अभी अभी हुई विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, रासप, शिव संग्राम रयत मिलकर जो महायुति बनी, जो चुनाव के पहले बनी, उसको इस राज्य की जनता ने जनादेश दिया, खूब अच्छा जनादेश दिया, ताकि हम सब मिलकर सरकार स्थापित आराम से कर सकते थे। कल इसके कारण माननीय राज्यपाल महोदय जी ने भारतीय जनता पार्टी को नया सरकार बनाने के लिए न्योता दिया, लेकिन जनादेश होने के बावजूद भी उसका अनादर करते हुए शिवसेना ने साथ में सरकार बनाने के लिए अनिच्छा व्यक्त की, इच्छा नहीं ऐसा कहा, इसलिए अब हम सरकार नहीं बनाएंगे, यह माननीय राज्यपाल जी को कन्वे करने के लिए यहाँ हम आए थे। यह जनादेश साथ में मिलकर काम करने का था, उस जनादेश का अपमान करके शिवसेना को यदि कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनानी है तो उनको हमें हमारी खूब खूब शुभेच्छाएं।
महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। मुंबई से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर इस समय टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मयूरेश, सुना आपने बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने क्या कहा? चंद्रकांत पाटिल के इस ऐलान से पहले आज दिन भर क्या गहमा गहमी रही बीजेपी के भीतर, और बीजेपी के नेता इस फैसले पर कैसे पहुंचे कि उन्होंने सरकार बनाने से ही मना कर दिया?
इसमें कुछ नई बात या फिर चौंकाने वाली बात नहीं थी। बीजेपी जब भी देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा दिया दो दिन पहले, तभी उन्होंने ये कहा था कि वो अल्पमत की जो सरकार है, सिर्फ 105 विधायक जो उनके आए हैं, उनके साथ से वो चुनाव सरकार जो है वो नहीं गठन करने जा रहे हैं। तो बीजेपी ने आज आधिकारिक तौर पर ये जाकर कह दिया। आज पूरी दिन भर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी हुई, राज्य के सारे उनके नेता थे। ऐसा भी पता चलता था कि अमित शाह भी इसको संबोधित करने वाले थे, तो दिल्ली से भी इस बारे में हाईकमांड से उनकी बात हुई है, और तभी जाके बीजेपी ने ये घोषित कर दिया कि वो सरकार नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये जरूर कहा कि सरकार वो नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या वो विपक्ष में बैठेंगे इसके बारे में वो भी नहीं कह रहे हैं, और क्या शिवसेना और उनकी अलायंस खत्म हो गई है इसके ऊपर भी बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। दूसरी तरफ शिवसेना में भी आज बैठक शुरू रही।
मयूरेश, शिवसेना के नेता संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आ रही है, आइए वो सुनते हैं।
देखो, मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ। आज ही दोपहर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने एक बात स्पष्ट कही है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा। मैं कहता हूँ, अगर उद्धव जी ने कहा है मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उसका मतलब है हम किसी भी कीमत पर राज्य को शिवसेना का मुख्यमंत्री
बीजेपी के साथ में बनाएंगे सरकार की एनसीपी के साथ।
बीजेपी के साथ बनाएंगे सरकार या एनसीपी के साथ? मयूरेश, आपने सुना संजय राउत ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह के समीकरण बनते देख रहे हैं आप?
पहला समीकरण जैसे ही खारिज होता जा रहा है कि शिवसेना और बीजेपी शायद इन दोनों में जो मनोमिलन है वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो दूसरा रास्ता सिर्फ यही है कि शिवसेना सरकार स्थापन करे, और या फिर एनसीपी और कांग्रेस उनके साथ सरकार में शामिल हो, या फिर बाहर से उन्हें जो है सपोर्ट दे दे। लेकिन अभी तक शिवसेना ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वो बात कर रहे हैं एनसीपी से। प्रफुल्ल पटेल जो राष्ट्रवादी के नेता है एनसीपी के, उनकी शरद पवार से आज बैठक हुई मुंबई में, और बाद में आकर उन्होंने फिर से ये कहा कि उनको मैंडेट विरोधी पक्ष में बैठने का है और वो फिलहाल वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये अब तक पता नहीं चल रहा है। सिर्फ यही कॉम्बिनेशन बन सकता है। कांग्रेस की जो बैठक है उनके सारे एमएलए जयपुर में है, और उन्होंने भी फिर से ये दोहराया कि उन्होंने अब तक कोई भी निर्णय नहीं किया है कि
जी मयूरेश, वो कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान हम अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं।
हमको लोगों ने ये मैंडेट दिया है अपोजिशन में बैठकर काम करने के लिए, और वही फैसला हमारा है। आज हाईकमांड जो बोलेगी वो उस तहत चलने का हमारा पूरा एक तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हाईकमांड क्या निर्णय लेगी वो उन पे छोड़ा हुआ है। कोई शिवसेना को सपोर्ट कर रहे बोल रहे, कोई नहीं कर रहे बोल रहे, कोई ये कोई बात नहीं है। और अपोजिशन में बैठ के हम और एनसीपी काम करना, ये हमारा फैसला है।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे आप। मयूरेश, ये बताइए कि बीजेपी ने सरकार बनाने से मना कर दिया, शिवसेना जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहती है, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ऐसे में महाराष्ट्र में सरकार आखिर बनाएगा कौन?
यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके आगे क्या हो सकता है कि बीजेपी तो आगे नहीं जा रही है। मैं बता दूं कि शिवसेना ने अब तक वो कॉलिशन से एनडीए से बाहर नहीं गए हैं, इन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, और उनके एक मंत्री अरविंद सावंत अभी भी केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं। तो ये अटकलें अभी भी लगा रही है कि इन दोनों में बात हो सकती है। अब राज्यपाल क्या करेंगे, गवर्नर क्या करेंगे, ये भी अहम सवाल है। अगर बीजेपी ने उनको कहा है कि वो सरकार नहीं बनाएंगे, तो क्या वो शिवसेना से पूछेंगे कि बिकॉज आप सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हो आप सरकार बनाएंगे? लेकिन मुझे ये बताया गया है कि राज्यपाल अपना समय ले सकते हैं शिवसेना से पूछने से पहले। अब वो शिवसेना को कब पूछेंगे, क्या इसमें समय लगेगा, और अगर वो शिवसेना को पूछते हैं तो शिवसेना क्या करेगी, ये अहम सवाल है। अब भी उद्धव ठाकरे ने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है कि वो क्या करेंगे, कि वो सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे।
ये थे बीबीसी संवाददाता मुंबई से मयूरेश कोन्नूर। महाराष्ट्र की राजनीति में मची इस उथल पुथल के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी शिवसेना पर दबाव बना रही है? यदि हाँ तो वो इसमें कितना कामयाब होगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके सियासी नफे नुकसान जो होंगे वो किसको होंगे? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, जवाब तलाशने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन से बात की।
देखिए, दबाव तो शुरू से ही था, हालांकि ऐसे लग रहा था कि सेना और ज्यादा दबाव बनाई है बीजेपी के ऊपर। ये एकदम ताजुब की बात है कि दो प्रीपोल एलायंस जिनको एकदम आराम से बनाना चाहिए था सरकार, वो इतनी बुरी तरह भिड़ गए हैं एक दूसरे से। मुझे लगता है कि दोनों में बीजेपी बहुत चतुराई से अपना कार्ड खेल रही है। देखिए, आज जब गवर्नर ने उनको कहा था कि आप सरकार बनाने की प्रतिक्रिया शुरू करिए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे पास संख्या नहीं है तो हम सरकार नहीं बना पाएंगे। फिर उन्होंने वैसे कैजुअली प्रेस वार्ता या कहीं स्टेटमेंट में कहा अब सेना बना सकती है सरकार, चाहे एनसीपी और कांग्रेस के संग। तो पूरा जो बॉल है वो सेना के कोर्ट में, गेम जो है सेना के कोर्ट में चला गया। अब हमें देखना है कि सेना क्या कहती है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं मुझे लग रहा है कि वो थोड़े दुविधा में पड़ गए हैं। आज सुबह उन्होंने ऐसे संकेत दिए कि शायद वो हिंदुत्व के नाम पे फिर बीजेपी के साथ कुछ समझौता करके सरकार बना सकते हैं। फिर दोपहर तक कहा कि नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कांग्रेस के साथ जाने को। कांग्रेस क्या कह रही है ये हमें अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि हाल ही में जो सोनिया गांधी का स्टेटमेंट बयान आया था, उन्होंने साफ साफ कह दिया अपने लोगों को कि सेना के साथ हमें कुछ गठजोड़ कुछ नहीं संबंध नहीं रखना चाहिए। जो उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक ही है। तो अब हमें देखना होगा कि सेना क्या करती है, क्योंकि बीजेपी तो अपना पत्ता खोल दी।
राधिका जी, कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो कांग्रेस आलाकमान पार्टी अध्यक्ष लेंगी। क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में अजीब तरह से पत्ते खुल रहे हैं, क्या ये संभावना भी हो सकती है कि एनसीपी और कांग्रेस मिलकर इस मौके का फायदा उठा ले जाएं?
उनको टेम्पटेशन तो जरूर होगा कि बीजेपी को किसी तरह बाहर रखने के लिए कांग्रेस भले ही आउटसाइड सपोर्ट दे, एनसीपी शायद सरकार का भाग हो, और शिवसेना के साथ मिलके शिवसेना का मुख्यमंत्री को बना के एक सरकार बिठा सकते हैं। हमें ये इसमें कई सारे सवाल उठते हैं। क्या शरद पवार जो एनसीपी के कदम नेता हैं वो इतनी आसानी से मान लेंगे कि आदित्य ठाकरे या जो भी एकनाथ शिंदे जिसको भी सेना बिठाना चाहती है मुख्यमंत्री के कुर्सी में, वो इतनी आसानी से वो एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? हमें ये देखना है। अच्छा, और जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, मुझे लगता है अब आइडियोलॉजी खत्म ही हो गई है। जो राम मंदिर की जो वर्डिक्ट आई कल, उसके बाद कांग्रेस ने कहा बिल्कुल मंजूर है और हमेशा चाह रहे थे कि एक राम मंदिर वहाँ वो स्थान पे, जन्म स्थान पे राम मंदिर आ जाए। तो आइडियोलॉजी का जमाना तो खत्म हो गया है, अब ये पूरी बात आ गई है पावर शेयरिंग पे, कौन किसको क्या मिलता है, कौन सा पद मिलता है।
महाराष्ट्र की राजनीति का विश्लेषण कर रही थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज दिल्ली में अपने आवास पर हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई। इनमें बाबा रामदेव, स्वामी परमात्मानंद, स्वामी अवधेशानंद, शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद समेत अन्य धर्मगुरु मौजूद थे। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि धार्मिक नेताओं के साथ ये बैठक सभी समुदायों के बीच आपसी भाईचारा और प्रेम की भावना बनाए रखने के लिए बुलाई गई थी। दूसरी ओर दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर दूर अयोध्या में रहने वाले मुसलमान नौजवान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफी कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद को उन्होंने खुलकर बताया।
शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि राम मंदिर अयोध्या में बनाया जाएगा। इसके बाद से यहाँ के मुसलमान क्या सोचते हैं, खासतौर से मुसलमानों की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी के लोग जमा हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनकी राय जानना चाहेंगे। मुझे लगता है आप लोग इतने यंग हैं कि सब 1992 यानी 6 दिसंबर 1992 के बाद के ही जन्म लिए होंगे ना। आप पहले नाम बता दीजिए।
मेरा नाम सैयद सीमाब है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ।
सीमाब, ये बताइए कि जो शनिवार को फैसला आया उसके बारे में क्या सोचते हैं?
देखिए, हम लोगों ने यह वादा किया था कि जो भी फैसला आएगा हम उसको कबूल करेंगे, तो अपने फैसले को मान तो लिया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं और ये हुआ भी है हमारे साथ कि हमको सिर्फ फैसला दिया गया है, इंसाफ नहीं दिया गया।
ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, अपना नाम बताइए।
मेरा नाम कुमैल अशरफ है। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए थी, हम पहली बात ये, हम लोग को ज़मीन नहीं चाहिए थी, हम लोग को मेरी मस्जिद चाहिए थी जो हम लोग की तोड़ दी गई थी। मेन चीज़ जो हम लोग की थी वो तो हम लोग को मिली ही नहीं है, इस वजह से नहीं।
लेकिन 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, ये आपको, इससे आप खुश नहीं है? आप अपना नाम बताइए।
जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, अयोध्या कजियाना का। हम लोग को अगर ऐसे ही 5 एकड़ चाहिए थी, हम लोग के पास ऐसी कोई वो नहीं है कि हम लोग 5 एकड़ ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। एक फैसला चल रहा था जिससे था कि हमें वो जगह मिल जाएगी जो हमारे हक में।
फैसला तो आ गया, हक में नहीं आया आप कह रहे
जी।
लेकिन जो मस्जिद के लिए ज़मीन देने की बात है, आप सीमा ये बताइए कि वो ज़मीन आपको कहाँ चाहिए, अयोध्या कहा गया है?
देखिए, अगर ज़मीन देने की बात है तो अयोध्या की रेंज 80 किलोमीटर की है, हमें जो ज़मीन चाहिए वो 67 एकड़ जो एक्वायर एरिया है हमें उसी में चाहिए। हमको ज़मीन 80 किलोमीटर दूर दे दी जाएगी तो हम नमाज़ पढ़ने वहाँ तो नहीं जाएंगे ना सर, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर सरकार ज़मीन देना चाहती है तो हमें अयोध्या के अंदर दे, मेन अयोध्या।
अयोध्या, मेन अयोध्या के अंदर। भारत के दूसरे इलाकों में शायद लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा अयोध्या की ज्योग्राफी का, तो ये बताइए कि मेन अयोध्या का मतलब क्या हुआ?
मेन अयोध्या का मतलब है जैसे जो 5 कोस का, जैसे 14 कोस भी है लेकिन जो मेन अयोध्या है वो 5 कोस है।
5 कोस में जो बहुत सारे ऐसे हिंदू होली प्लेसेस हैं वहाँ पर, है ना?
जी बिल्कुल है वहाँ पे।
हम लोगों की यही दिली ख्वाहिश है कि जो भी फैसला आया हम उसको कबूल करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करना चाहता है तो हमें ज़मीन अंदर ही दे, मेन अयोध्या के अंदर दे, 5 कोस के अंदर दे।
अच्छा, आप भी जुड़िए, हम आपका नाम बताइए।
जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद आकिब जावेद।
अच्छा आकिब जावेद साहब, आपसे भी मैं रुजू होता हूँ, पहले मुजम्मिल से पूछ रहा था मैं ये कि जब पता चला कि फैसला आने वाला है तो यहाँ की मुस्लिम आबादी कहाँ चली गई, तो बहुत कम लोग दिख रहे थे।
जी, मुस्लिम आबादी जो ज़्यादातर जो गई थी वो फैज़ाबाद गई थी, जिसका जहाँ पे जो रिलेशन था फैज़ाबाद में, अपने घर में चले गए थे, क्योंकि उनके अंदर एक डर ऐसा था कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आया तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा यहाँ पे।
अब फैसला आ गया है, अब सबको शांति की अपील की गई है, तो आपका जो डर था वो ख़त्म हुआ?
जी, डर तो थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है कि ये जो हमेशा 1992 से हम लोगों के बर्थ के बाद से जो यहाँ पर एक बना हुआ था, मतलब जो 1992 में हम लोग यहाँ पर झेल चुके थे वो सारी चीज़ें देखने के बाद, जब कभी भी ऐसा कोई मौका आता था तो फिर जो है थोड़ा सा एक बार झेलने के बाद यहाँ के मुस्लिम्स में डर आ गया था, वो इस मतलब इस तरीके की कभी भीड़ वगैरह आई तो हमेशा वो कोशिश करते थे कि अपने यहाँ की लेडीज़ को और बच्चों को यहाँ से हटा देते थे। और अब इससे थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है बिल्कुल, क्योंकि जो है अब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में नहीं होगी।
सरकार ने तो काफ़ी कोशिश की, नेताओं ने कोशिश की कि ऐसा इस तरह से खुशी ना मनाओ कि मुस्लिम समुदाय के दिल पर चोट पहुँचे, लेकिन यहाँ पे कैसा रहा?
सर यहाँ पे सभी लोगों ने पटाखे जलाए, सब ने दिया जलाई, सब ने लाइटिंग की, खुशियाँ मनाई। और जब मैं कल शाम को अपने घर लौटा हूँ यहाँ पर, मेरा दिल इसलिए खट्टा नहीं हुआ सर, मैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसे मानता हूँ और मैं खुश भी हूँ इस बात से कि मेरे हिंदू भाई खुश हैं। लेकिन सर इंसाफ अगर मिलना चाहिए तो दोनों पक्षों को मिलना चाहिए, एक को नहीं।
अब हम थोड़ा आगे की तरफ निगाह डालते हैं, 3 साल या 2 साल या 1 साल जब भी ये मंदिर बन जाएगा, बहुत विशाल मंदिर होगा, जाहिर है अयोध्या में जो लोग ज़्यादा आएंगे, जो तीर्थयात्री हैं और यहाँ तक कि जो पर्यटक हैं वो भी आएंगे, तो शहर में तरक्की होगी, बड़ा शहर होगा, उस वक्त यहाँ की इकोनॉमी बेहतर होगी, उससे आप भविष्य अयोध्या का किस तरह से देखते हैं?
बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट आएगा ये सारी चीज़ें होने के बाद, तो फिर जो है अयोध्या के लिए तो बेहतर ही होगा, बाहर से लोग यहाँ पर आना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे जो है इकोनॉमिकली जो है ग्रोथ होगी।
हम लोग ने सबने बाहर जाकर पढ़ाई की है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो अगर हमें अच्छा इलाज चाहिए होता है, अच्छी एजुकेशन चाहिए या अच्छी नौकरी चाहिए, तो हम लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, अयोध्या से हमको हटना पड़ता है।
अब अयोध्या में जब तरक्की होगी तो नौकरियाँ भी पैदा होंगी, तो उसमें मुसलमानों को भी फायदा हो सकता है?
जी बिल्कुल हो सकता है, और हम तो चाहते हैं कि हमारा अयोध्या पूरे वर्ल्ड में एक अच्छे मकाम पे जाए, हमें यहीं पे रोज़गार मिले, हम यहीं पे रहें, हम यहीं पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में मिलना है।
अब कौन डेवलपमेंट तो होगा ये, जब लोग अयोध्या में आएंगे तो अयोध्या को बड़ा तो होना ही पड़ेगा, अब इसी वजह से डेवलपमेंट भी रुका था, बट अब तो ऐसा नहीं है, अब इंशाल्लाह ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि मुद्दा सारे टल चुके हैं, आ चुका है फैसला, तो इसी वजह से अब डेवलपमेंट तो होना ही होगा।
फिलहाल इतना ही, जुबैर अहमद को अयोध्या से इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
चक्रवाती तूफान बुलबुल ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल से गुजर तो गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान भी छोड़ गया। ओडिशा में बुलबुल का ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन पश्चिम बंगाल में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से पीएम तिवारी।
कमज़ोर होकर बांग्लादेश पहुंचने से पहले चक्रवाती तूफान बुलबुल ने शनिवार देर रात पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में जानमाल का भारी नुकसान पहुँचाया है। इस तूफान की चपेट में आकर अलग अलग इलाकों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा मकान ढह गए हैं और सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। तूफान की वजह से हजारों पेड़ उखड़ गए हैं। मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह तूफान शनिवार रात को लगभग 8:30 बजे 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राज्य के सीमावर्ती इलाकों से टकराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फ़ोन पर बातचीत में नुकसान का जायज़ा लिया। उन्होंने केंद्र की ओर से राज्य सरकार को हर संभव सहायता का भी भरोसा दिया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक ट्वीट में यही भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल पूरी रात राज्य सचिवालय नवान्नों में बने कंट्रोल रूम में बैठकर गुजारी। तूफान की वजह से मुख्यमंत्री ने अपना उत्तर बंगाल दौरा भी रद्द कर दिया है। इस बीच सरकार ने आज बुलबुल से हुए नुकसान पर केंद्र सरकार को एक प्राथमिक रिपोर्ट भेज दी है। ममता ने पत्रकारों को बताया कि दक्षिण 24 परगना के सुंदरवन से लगे इलाकों में संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री जावेद अहमद खान ने बताया कि तूफान की वजह से हजारों की तादाद में पेड़ गिरने के कारण कई जगह सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बिजली मंत्री शोभन देव चटर्जी ने बताया कि पेड़ों के गिरने के कारण कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए हैं। राजधानी कोलकाता में इस तूफान की वजह से 24 घंटों के दौरान 101.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो बीते 10 वर्षों में नवंबर के दौरान होने वाली बारिश का नया रिकॉर्ड है।
जानकारी दे रहे थे कोलकाता से पीएम तिवारी। पश्चिम बंगाल के बाद बात बांग्लादेश की। बांग्लादेशी घुसपैठ भारत में राजनीतिक मुद्दा बनता रहा है, लेकिन 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा वाले दोनों मुल्कों के बीच गैर कानूनी आवाजाही से पूरी तरह से कभी इनकार नहीं किया गया। जुलाई महीने में ही भारत में नूरुल आलम, लाखन चक्रवर्ती, आशीष दास और 30 ऐसे ही बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया जो असम की अलग अलग जेलों में बंद थे। लंबे वक्त तक कैद की वजह से इनमें से कईयों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की खास रिपोर्ट।
समुद्र पार करने की आदत तो उसे बचपन से थी। बीवी और बेटियों की बेहतर जिंदगी की चाह में नूरुल आलम उस दिन सरहदें पार कर गया।
शादी करार पर आमाके बल से तुम्ही काज करो, साकुरी करो।
मैंने शादी की, मेरी बीवी ने कहा हमने दलाल से बात की है, तुम भारत चले जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए चाकरी का इंतजाम हो जाएगा। दलाल ने कहा कि मुर्गी फार्म में काम दिलाएगा, 30,000 हर महीने टका मिलेंगे, लेकिन वहाँ कोई नौकरी नहीं थी। फिर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।
नूरुल आलम को गए 2 साल बीत चुके थे, उसे लेकर उम्मीदें खत्म हो गई थी, लेकिन तभी एक चिट्ठी आई।
श्री भाई, श्री में जी, से ले भारत है, आशा में जेल खाना था।
घर पहुंचने की खुशी मगर नूरुल आलम को कुल 6 साल बाद ही नसीब हो पाई। तब तक जिंदगी कई नई करवटें ले चुकी थी।
आशा देखे बारे थे हमार वाइफ नहीं अरे जो साथ चले गए सर ओके बोल सी तुम्हें कहना सोले।
जब मैं वापस आया तो मेरी बीबी मौजूद नहीं थी, वो किसी के साथ चली गई। मैंने जब पूछा कि क्यों चली गई तो उसने कहा मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, तुमसे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसने मेरी जानकारी के बिना मुझ पर केस कर दिया कि मैंने उसके पति को मारा है।
असम की जेलों में नूरुल आलम की मुलाकात दूसरे बांग्लादेशी कैदियों से भी हुई।
माता नष्ट हो जेल तक बहुत ऐसे बांग्लादेशी मानुष ठीक है ना बोलते पारा ना।
ऐसे बहुत से लोग हैं वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं, नाम पता तक नहीं बता सकते।
सुनामगंज के सुदूर गांव दीरितपुर में रहते हैं लाखन चक्रवर्ती और मोमिन अली का घर ढाका से कोई 150 किलोमीटर दूर दौलतपुर गांव में है। दोनों चंद महीने पहले ही भारत से बांग्लादेश वापस भेजे गए 30 लोगों में शामिल थे, लेकिन उनके परिवार वाले कहते हैं कि दोनों मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं। एक ऐसा ही परिवार हमसे बात करने से मना कर देता है। इन सब के बावजूद लोगों में भारत जाने की चाह बनी हुई है।
मैं आशा करता हूं कि हिंदू होने के नाते भारत में शांति से रह पाऊंगा।
नरेंद्र मोदी सरकार के इस वायदे ने कि कहीं से भी आए हुए हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी इन इलाकों में नई समस्या पैदा कर दी है।
मोदी जा बोले मुखे सेटा करे ना आमादेर देशे जे हतो दरिद्र एकदम निम्न श्रेणी मानुष जरा तादेर भिटे में।
मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। हमारे देश के सबसे गरीब लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर भारत चले जा रहे हैं, जब उन्हें वहां आसरा नहीं मिलता तो फिर वापस आ रहे हैं। बांग्लादेश में उनकी स्थिति ठीक ठाक होती है, लेकिन वो और बेहतर जीवन की चाह में वहाँ जाते हैं, वापस आने पर उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है।
हिमाद्री शेखर सुनामगंज में वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिमाद्री शेखर का कहना है कि हिंदुओं की नागरिकता वाला वायदा नरेंद्र मोदी भारत के वोटरों का मन जीतने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ सच्चाई होती तो लाखन चक्रवर्ती और दूसरे हिंदुओं को असम से निर्वाचित क्यों किया जाता। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी, सुनामगंज, बांग्लादेश।
और इस समय नागपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा T20 मुकाबला चल रहा है। आदेश कुमार गुप्त उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
जी संदीप, देखा जाए तो निर्णायक मुकाबला क्योंकि दोनों टीमें एक एक से बराबरी पर है। ताजे समाचार ये है कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर थोड़ी देर पहले जब 12 ओवर समाप्त हुए तब भारत का स्कोर 2 विकेट खोकर 94 रन था। KL राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। वो 34 गेंद पर 52 रन बनाकर नाबाद है, जिसमें उनके 7 चौके शामिल हैं। उनका साथ दे रहे हैं सुरेश अय्यर, 20 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करने पड़ने के बाद रोहित शर्मा जो कि भारत के कप्तान, वो केवल 2 रन बना सके, जबकि शिखर धवन के बल्ले से 19 रन निकले जिसमें उनके 4 चौके शामिल हैं। और भारत की ओर से गिरने वाले जो 2 विकेट थे शुरुआती, वो लिए थे शफूल इस्लाम ने, और इसी बीच तीसरा विकेट भी गिर चुका है। तो ऐसा लगता है कि अब श्रीलंका को थोड़ी सी राहत की सांस मिली होगी क्योंकि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे KL राहुल। तो ये कहना होगा कि 13वें ओवर की जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है बांग्लादेश के लिए।
बहुत शुक्रिया। गागर में सागर भर रहे थे आदेश कुमार गुप्त। तो चलते चलते पुनः मुख्य समाचार मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। महाराष्ट्र में आज बीजेपी के नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है। ईरान ने बताया है कि उन्हें कच्चे तेल के एक बड़े भंडार के बारे में पता चला है। भारत और बांग्लादेश में तूफान बुलबुल के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। آسٹریلیا کے نیو ساؤتھ ویلز میں جنگلوں میں لگی بھیشن آگ میں اب تک 3 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ بی بی سی سماچار۔
دن بھر میں آج اتنا ہی۔ کاریکرم کا تکنیکی پکش سنبھال رہے تھے کپل دیو سنگھ۔ اگلا پرسارن نمسکار بھارت بھارتی سمے انوسار صبح 6:30 بجے۔ فی الحال سندیپ سونی کے ساتھ سمست سہیوگیوں کو دیجیے اجازت، لیکن پل پل بدلتی خبروں کے لیے BBC Hindi.com ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ شبھ راتری۔